वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आज हम श्रीमद् भागवतम का नौवां स्कंध अध्याय दसवां है, जो रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन करता है। भगवान का चरित्र रामावतार में हमें बहुत सारी मर्यादा सिखाता जाता है। मर्यादा सीखने के पीछे हमें बोध मिलता है। बोध जब हम अंतर्गत करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो अपना जीवन सफल बनता है। जो ये मर्यादा का कोई उल्लंघन करता है तो उसका जीवन सफल नहीं होता। जीवन को सफल बनाने के लिए चार पुरुषार्थ दिए गए हैं, मेहनत करनी पड़ती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ बताए हैं। तो त्रेतायुग में ज्यादातर लोग मोक्ष की इच्छुक होते थे और यज्ञ द्वारा पवित्र बनकर मुक्ति करते थे। तो मुक्ति का मतलब यह है कि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति हमारा जो झूठा स्वरूप होता है उसका त्याग करके अपने सच्चे स्वरूप में स्थापित होना, उसको मुक्ति कहते हैं। हम जीव कहलाते हैं क्योंकि हमारे पास जीवन है। जीने के लिए हमें समय की मर्यादा दी गई है। उसके उपरांत जीवन में हम जो जो हासिल करना चाहते हैं, यानी कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ये समय दिया गया है कि इतने समय में आप अपनी इच्छा पूर्ण कर लो। लेकिन जो मनुष्य जीवन का उत्तरदायित्व है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो निभाकर अपना परम लक्ष्य प्राप्त करो। तो धर्म का पालन ब्रह्मचारियों को, यानी कि बच्चों से ही शिक्षा देने से शुरू होता है। अर्थ और काम पर आधारित जीवन जीवन नहीं है, लेकिन जीवन निर्वाह करने के लिए सुविधा दी गई है। निर्वाह का भी चक्र होता है कि यदि आप पैसे कमाओगे तो किसके लिए कमाओगे? खुद के लिए इतनी आवश्यकता नहीं है तो कितने परिवार वाले, यानी कि परिवार से हमारा संसार बनता है। अकेले होते तो कमाने की भी आवश्यकता नहीं समझते, लेकिन अकेले रहते नहीं क्योंकि हमें कामनाएं हैं, काम वासनाएं होती है। तो उसे पूरा करने के लिए फिर भी हमें चक्कर में घुसना पड़ता है और जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। बिन जिम्मेदार रहकर हम संसार का चक्र में और सड़ा बैठा करेंगे। तो धार्मिकता का जो सर्वप्रथम प्रयोग बताया है वो बचपन से सीखने के लिए हमें सावध करता है, सावधान। जो बच्चा धर्म क्या है नहीं सीखता तो उसका अर्थ और काम में सिर्फ राक्षसी वृत्ति पैदा होगी, भगवान के बारे में कोई सहानुभूति नहीं पैदा होगी, न तो अपने जीवन का लक्ष्य पूरा कर सकेगा, बल्कि इंद्रिय तृप्ति में वो सिर्फ अपने को मनुष्य जन्म से भी अधोगति पाने के लिए वो अग्रसर रहेगा, आगे बढ़ेगा। यानी कि नाशवंत जीवन, नाशपंथी जीवन। तो अर्थ काम भी मर्यादा में करना चाहिए, अर्थ काम भी मर्यादा में करना चाहिए। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, मुक्ति। जो अर्थ काम में रुचे हुए हैं उनको मुक्ति की तो कोई परवाह होती ही नहीं, मुक्ति क्या चीज है उसमें इंटरेस्ट नहीं। अभी तो हमारी रगड़ करने दो, हमारे पास ताकत है, हमारे पास इच्छा है, हमारे पास मनोरथ है। अर्थ और काम में हम ऐसे जुटे हैं कि धर्म जितना पाया था उसको आगे उठाने के लिए भी हम मेहनत नहीं कर पाएंगे, मौका मिलता भी हम जाने देंगे। अर्थ काम ऐसा मोहांध बनाता है। जब मोक्ष की तैयारी के लिए हमें जो निवृत्ति जीवन दिया गया है, कभी तो शरीर छूटे पहले में छूट जाए, अंग्रेजी में कहा ये मोहम्मद मुसलमान का जो धार्मिक नेता है मोहम्मद ने कहा कि डाई बिफोर यू डाई, मरते पहले इच्छाओं से मर जाओ, नहीं तो मृत्यु के बाद वही इच्छा तुम्हें दूसरा जन्म देगी, शायद अधर्म जन्म देगी। ऊंचा जन्म तो बात की बात है, काम किए नहीं है, काम कूड़े किए हैं और ऊंचा जन्म की अपेक्षा रखता है, कैसे बनेगा। तो डाई बिफोर यू डाई मीन्स जस्ट गिव अप सो कॉल्ड फोर्स अटैचमेंट, विरक्ति लाओ, आसक्ति छोड़ो, आसक्ति के बजाय विरक्ति लाओ और वो इच्छा को मार देने को बराबर है। लेकिन विरक्ति शब्द भगवान को अनुकूल हो तो स्वीकारना, भगवान को प्रतिकूल हो तो नहीं स्वीकारना। भगवान जैसे बड़े वैरागी कोई है ही नहीं दुनिया में, इनको किसी की परवाह नहीं, हमें परवाह है, इसलिए भगवान पर आसक्त रहने की आवश्यकता बताई जाती है। हमें परवाह है, हम यदि परवाह न करें तो बेवकूफ समझ जाते हैं, क्योंकि इसको न तो आगे ज्ञान है न, क्योंकि भगवान की शरणागत होना ही नहीं चाहते, भगवान के सामने भी नहीं है। जो आता है तो चार इच्छाओं लेकर आता है, एक तो आत अपना दुख का निवारण के पास के लिए भगवान के पास आता है, अर्थात ही बहुत सारी लोटरी लग जाएगी उसी लोभ से भी भगवान के पास आता है, जिज्ञासा लेकर भी आता है और ज्ञानी भी भगवान के चरणों में मस्तक नुमा सकता है, इसलिए ये चार प्रकार के लोग हैं। यानी कि हम जो यहाँ एकत्र हुए हैं भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो चार में से कोई तो होगा, सही। तो भक्ति का जो विषय है तो जो जो जीव है वो जीव का मूल स्वरूप का विषय है। जीव के मूल स्वरूप की जो व्यवहार की सारी गतिविधियां हैं वो भक्ति कहलाती है। गतिविधियां यानी कि ये सारा व्यवहार कैसे चलता है भक्त और भगवान के बीच, पहले तो कुछ न कुछ संबंध होना चाहिए, बाद में व्यवहार की बात करें। लेकिन ये भगवान के साथ संबंध कौन जोड़वाता है? गुरु ही जोड़वा सकता है। हम तो अज्ञानी हैं, लेकिन गुरु आकर हमें भगवान के साथ का संबंध जुड़वाता है। इसे ब्रह्म संबंध कहते हैं, भगवान के साथ का संबंध। तो संबंध होता है तो संबंध टिकाने के लिए व्यवहार होता है, और एक व्यवहार के अंत में हमें कुछ प्रेम की प्राप्ति होनी ही चाहिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए, भगवान भक्त रूप बनकर आए और भगवान की भक्ति की सर्वोच्च दशा में जो फल प्राप्त होता है वो प्रेम होता है। ये मोक्ष से भी ऊपर बताया जाता है। ये पंचम पुरुषार्थ भक्ति द्वारा जो प्राप्त होता है उसे प्रेम कहते हैं, भगवान का प्रेम। नहीं तो मोक्ष के लिए भक्ति करना वो ठीक नहीं है। भक्ति तो बीच में अपने आप आ जाती है। भक्ति करते ये मोक्ष तो बीच में अपने आप आ जाता है। मोक्ष के लिए अलग प्रयत्न नहीं करने पड़ते जो भक्ति करता है। कहते हैं कि एक भक्त के द्वार पर तो मुक्ति दरवाजे पर खड़ी रहती है और हाथ जोड़कर कहती है भगत को, है भगत जी बोलो क्या सेवा करूं आपकी। तो भगत कहता है कि ओ मुक्ति माता, अभी फुर्सत नहीं है, अभी सेवा का समय है। भक्त तो सेवा मांगता है, मुक्ति की अवस्था आए ना आए वो सेवा में चालू है। मुक्ति मिल जाती है फिर भी उसकी सेवा बहुत दृढ़ बनती है, उसे विशुद्ध भक्ति कहलाती है। जो मुक्ति के बाद आती है वो भक्ति इतनी विशुद्ध हो जाती है, जब भगवान के धाम भगवान के साथ हमें व्यवहार करने के लिए वहां पहुंचा सकती है। तो ये सर्वोच्च स्थान मोक्ष के बाद बताया जाता है। अब देखो, भक्त भी बहुत सारे कुल में हो गए। कुलों की जो सर्वश्रेष्ठता है तो ये कुल में कौन भगत पका है, कौन भगत बनकर आया है, तो ये त्रेतायुग की बात जब रामचंद्र जी आए हैं तो त्रेतायुग की बात बताते हैं। रामचंद्र जी का कुल जो है वो सूर्यवंशी, ये सूर्यवंश कहलाता है। सूर्यवंश में बहुत सारे ऐसे भगत हो गए हैं। भगीरथ राजा जो गंगा का अवतरण करने शिव जी को प्रसन्न जिसने किया वो भी सूर्यवंश में हुआ है, लेकिन बहुत पहले। उसके बाद बहुत सारे पैदा हुए, लेकिन वही सूर्यवंश में खटवांग महाराज भी पैदा हुए। खटवांग महाराज की ख्याति ऐसी है कि वो भक्त होकर देवताओं के साथ रहकर असुरों को जीतने का ही उनकी सेवा थी। देवताओं के लिए असुरों के साथ चढ़ाई करते थे, देवताओं के पक्ष में रहकर। देवता भी भक्त हैं और ये विशुद्ध भक्त भी देवताओं को सहाय करता है, तो देवता बहुत प्रसन्न थे कि देखो भक्तों की सेवा कर रहा है। तो देवता प्रसन्न होकर खटवान महाराज को पूछते हैं, बोलो क्या वरदान चाहिए? क्योंकि एक ही वरदान, मेरी मृत्यु कब होगी बता दो। तो देवता कहते हैं कि एक पल में हो जाएगी। अरे स्विच ऑफ करने में कितनी देर लगती है, लाइट बंद करनी हो तो एक पल लगती है, कम लगती है। तो जब मृत्यु कब आएगी कह रहे हैं तो देवता कहते हैं एक पल की अवधि है, बस इतना काफी था खटवान महाराज के लिए भगवान में ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि सारा जीवन भक्ति का है, लड़ाई करते भी भक्ति करते हैं। देखो माम अनुस्मरण युद्ध भगवान भगवद्गीता में भी कहते हैं कि यदि तेरा धर्म क्षत्रिय का ही है, रक्षा करने का ही है, लड़ाई करने का ही है, तो मुझे याद करते करते मेरी प्रति के लिए लड़ा कर कहां दिक्कत है तुझे, फर्क क्या पड़ेगा, भक्ति बन जाएगी। ये तो लड़ना तो है ही, लड़ना तेरा स्वाभाविक कर्म है। तो खटवान महाराज को एक पल कृष्ण भगवान का स्मरण करने में रहे और तुरंत भगवत धाम पहुंच गए। हमें तो दम निकलता है भगवान को याद करना के, दम जब जैसे कोई जबरदस्ती करता हो ना तभी हम थोड़ी देर याद करते हैं फिर से भूल जाते हैं। जब दिमाग पर ये हथौड़ा नहीं पड़ता कि भैया चलो हरे कृष्ण महामंत्र जपो, हैं हूँ हमारे गुरु भाई थे वो सर्जन है हॉस्पिटल में बम्बई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, वो भक्ति में काफी प्रचारक भी था, लेकिन उसको तो हर रोज मरीज को देखना, मरते समय की भी बात उन लोगों के ध्यान में थी। तो जब अपने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल खुली उसे पहले की बात है, तब हॉस्पिटल नहीं थी लेकिन भक्त लोग प्रचार करते थे हॉस्पिटल में। तो एक सिंधी औरत की बात कर रहे थे हमें, ये औरत को इतनी आसक्ति थी अपनी बेटी पर, तो भक्त को स्वाभाविक जो बेटी को हमेशा याद करा करती है उसे बजाय भगवान को याद कर। तो क्षण क्या भगवान को याद कर, बोलो हरे कृष्ण क्या क्या कई दिनों क्या क्या करती रही और मर गई। इनको बारंबार कहते भी पता नहीं चलता कि भगवान को याद करना कितना आवश्यक है। तो कहते कि लोग की मति मरते समय इतनी विपरीत हो जाती है, विपरीत विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जो शिक्षा शुरुआत से नहीं प्राप्त हुई है तो वो मरते समय कोई नई ढंग से सीख सकता है क्या? बचपन से ही प्राप्त करनी चाहिए तो अंत समय में काम में आएगी। जब मरते समय कोई सिखाने जाता है तो हो सकता है क्या उसे याद रहेगा? उसकी तो रुचि ही नहीं बनेगी। तो खटवांग महाराज को पल भी नहीं लगी है भक्त बनने के लिए। और उसी वंश परंपरा जो है उसमें खटवांग महाराज का बेटा दीर्घबाहु हुआ, दीर्घबाहु का बेटा रघु हुआ, जो रघुवंश के आदि बताते हैं। और रघु का बेटा पृथुश्रवा हुआ और पृथुश्रवा का बेटा अज हुआ और अज का बेटा दशरथ हुआ और दशरथ का बेटा राम हुआ। ये भैया रघुकुल की रीति क्या है? कौन सी रीति की बात करें जो सदा चली आई कहते हैं? प्राण जाए पर लेकिन वचन में क्या बड़ा वचन क्या होता है? वचन क्या है? मैं भी बोलता हूं, आप भी बोलते हैं दिन भर में। कौन सा वचन है कि वो वचन न जाए? बोलो।
वरदान
नहीं, वो दशरथ राजा ने जो कैकेयी को तीन वरदान दिए थे वो वचन कहलाते हैं। लेकिन वचन तो परम सत्य का ही होना चाहिए। ये सारा कुल परम सत्य भगवान की प्रति के लिए जीता था सारा वंश। और दशरथ भगवान दशरथ राजा भी भगवान के परम सत्य को जानकार थे और भगवान की सेवा के लिए ये राज्य करते थे। महर्षि जैसे राजा थे तो वो भगवान की प्रीति के लिए ये असुरों का संहार करते करते जब लड़ाई में इनको आपत्ति आ गई तब कैकेयी ने मदद की क्योंकि उसके साथ थी लड़ाई में। दशरथ राजा के रथ के पहिए की धुरी जो थी उसमें से निकल गया और तो धुरी जब निकलती तो रथ गिर जाता और लड़ाई चालू है, रथ चल रहा है। तो कैकेयी ने अपनी उंगली घुसाकर धुरी बनाई। इसी तरह रथ चला और उसकी विजय हुई तो दशरथ राजा ने खुश होकर कहा कैकेयी तुमने बड़ा उपकार किया मेरे पर, तुम भगवान की प्रति के लिए मैं तुझे तीन वर मांगने को कह। तो परम वचन वरदान नहीं है, परम वचन तो भगवान की प्रीति है, उसके लिए जीना है। उसके अलावा दूसरा जीने का कोई हेतु है क्या? है ही नहीं। भगवान की प्रीति के लिए राज्य करना, भगवान की प्रीति के लिए हमें अपना जीवन जीना, चाहे हम राजा नहीं है तो क्या है, फिर भी हम जी सकते हैं। भगवान बताते हैं कैसे जीना है भगवान की प्रति के लिए। हर एक व्यक्ति देखो भगवद गीता में कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति मुझे प्रतिपूर्वक यदि फल पत्ते फूल या जल प्रीतिपूर्वक देने का प्रयत्न करता है तो उसका मैं स्वीकार करता हूं और खाता भी, क्योंकि भगवान के साथ हम प्रीति का ही व्यवहार कर सकते हैं तब भगवान और हमारे बीच व्यवहार सफल होगा। यदि भगवान के साथ प्रीति नहीं है लेकिन भगवान के साथ देरी बनकर व्यवहार करते हैं, उनका विरोधी प्रतिस्पर्धी तो क्या हाल होता है? प्रेम की तो संभावना ही नहीं, बल्कि दुश्मनी। और हम ऐसे दुश्मन भी नहीं है भगवान के साथ, हम जो अज्ञानता में जो दुश्मनी हमने खड़ी की है, लेकिन ये दुश्मनी बहुत मामूली है। ऐसी दुश्मनी यदि करना है तो भगवान सामने आकर लड़ सकते हैं। वे तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ऐसे ही बने थे जब भगवान के साथ दुश्मनी करके लड़े। या कोई राक्षस बन के या कृष्ण अवतार में भी जो आए, बकासुर अगासुर इत्यादि, तो ये बड़े बड़े उच्च कोटि के राक्षस थे काफी। और उन लोगों के ईर्ष्या भगवान से भी बहुत ज्यादा थी, हमारी तो कुछ है ही नहीं, फिर भी हम अज्ञान का के कारण हम बेवकूफ बनते रहते हैं, भगवान का अनादर करते रहते हैं। तो भगवान की प्रीति का जो वचन है वो जीवन सिद्ध करना है, इसलिए कैकेयी भी उसका उपयोग कर सकती थी, लेकिन उसकी बुद्धि किसने बहन मारी? मंथरा ने ना, मंथरा ने उसका दिमाग चक्राव में डाल दिया। मंथरा ने कैकेयी का दिमाग चक्राव में डाल दिया, जो दशरथ राजा को इतनी मदद करती है उसका जी बचाने के लिए भी, तो उसकी बुद्धि कैसे चक्राव में चल गई? जो मन के आधार पर काम करता है वो मंथरा जैसा है। बुद्धि बुद्धि मन से बेहतर होती है, फिर भी जो बुद्धि का उपयोग नहीं करता लेकिन मन का उपयोग करता है तो वो मंथरा जैसा ही बनेगा। जो मन से धर्म का पालन करना चाहता है लेकिन बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहता है तो वो भावुक या बेवकूफ भी बन सकता है। मन जितना चंचल है, जितना धोखेबाज है, उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। उपनिषद इत्यादि सब में बताया है, भगवद गीता में भी बताया है कि यहां देख सकते हैं, जैसे भगवान रथ पे सारथी बनकर अर्जुन का रथ हांक रहे हैं, ये शरीर भी रथ है, उसमें पांच इंद्रियां पांच घोड़े बताए हैं। मन लगाम होती है जो घोड़े की रस्सी, लेकिन लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए? कहते हैं बुद्धि के हाथ में लगाम होनी चाहिए। आत्मा तो पैसेंजर है, बैठा है। देखो अर्जुन का रथ हाँकना यानी कि अर्जुन की बुद्धि ठिकाने रहे, इसलिए भगवान सारथी बने, क्योंकि अर्जुन का मन तो डगमगु था कि मेरे भाइयों के साथ मुझे लड़ने से क्या फायदा होगा। क्षत्रिय का धर्म चुक रहा था वो, क्षत्रिय को जब ललकार होती है तो लड़ना पड़ता है, वो रण से भाग जाने की बात करता है। तो भगवान ने अर्जुन की बुद्धि ठिकाने लाई, यानी कि स्वयं भगवान हमारी बुद्धि में बैठ जाते हैं तो हमारा जीवन बराबर संवर जाता है। मंथरा यानी कि मन कभी भी हमें परम सत्य के लिए सहयोग नहीं देता। आप ताज्जुब करोगे, क्या मन नियंत्रित है हमारा? जो हम मन के स्वभाव से जो हमेशा विचलित रहते हैं, यानी कि हमारा कुछ काम भी सही नहीं होता, मन का गंदा ही, ये अच्छा है वो बुरा है, मुझे तो अच्छा ही चाहिए, अरे करवा है फिर भी जो यदि फायदा करता है तो लेना पड़ेगा, अच्छे बुरी की बात कहां तक। बुद्धि का उपयोग करो, जानकारी प्राप्त करो कि हमारे जीवन रथ को भगवान की बुद्धि देकर चलाना चाहिए। भगवान जैसे उपदेश देते हैं, ये उपदेश मन को देते हैं या बुद्धि को देते हैं? उपदेश किसको मिलता है? धर्मशास्त्र उपदेश देते हैं, गुरुजन उपदेश देते हैं, आचार्य लोग उपदेश देते हैं, उपदेश किसके लिए होता है, मन को या बुद्धि को? सवाल करिए। मन को कभी कोई उपदेश नहीं देता, मन को तो पीटना पड़ता है, उपदेश नहीं काम करता। हमारे परम गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कह रहे हैं कि ये मन इतना बेकार है, जिसने अपनी इंद्रिय नियंत्रित नहीं की है ना, तो उसका मन शत्रुवत ही रहता है। बताओ किसने अपनी इंद्रिय नियंत्रित करी है? यानी कि मन चंचल है, ये मन खड़ा है। बुद्धि में परम सत्य भगवान स्वयं यदि विराजमान होते हैं तो उसका उपयोग करके हमारा जीवन संवारना चाहिए। रामचंद्र जी का ये आदर्श कि पिता की आज्ञा यानी कि सुनकर ही निश्चयात्मक बुद्धि से काम करते हैं। भगवान तो स्वयं परम सत्य है, लेकिन परम सत्य की सेवा के लिए हमारा जीवन जाना चाहिए। सेवा परमो धर्म, यानी कि जो परम की सेवा करता है वो धर्म है। ऐसे नहीं कि सेवा स्वयं अपने आप में धर्म बन जाता है। क्या कोई गधा है उसकी सेवा करते धर्म बन जाता है क्या? कोई देवकूप की सेवा करो क्या धर्म बन जाएगा? हमें कुछ नहीं मिलेगा। गधे की सेवा करते लाभ के अलावा कुछ नहीं मिलता। कहने का मतलब है परमस्य सेवा ही धर्म। जो परम है उसकी सेवा को धर्म कहते हैं। परम कौन होता है? भगवान, परम सत्य, परम ब्रह्म, परम धामम, पवित्रम, परमम भवान। देखो भगवान को परम शब्द लागू होता है। इनके अलावा उसकी बरोबरी करने वाला कोई नहीं है या ऊपरी कोई नहीं है। भगवान की यह व्याख्या है। तो कहने का मतलब उसकी सेवा के लिए हमें अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। मन को मत लगाओ। जिस बुद्धि से संकल्प करके इंद्रियों को निग्रह करके मन को ठिकाने रखना है, रामचंद्र जी का आदर्श ऐसी मंथरा के लिए माता का वाक्य, यानी कि एकदम थर्ड क्लास जो रामचंद्र जी के विरुद्ध जिसने वरदान मांग लिया भगवान की विरुद्ध, भगवान को 14 साल का वनवास दे दो, मेरे बेटे भरत को राज्य दे दो, तीसरा कौन सा मांगा था? तीन वरदान मांगे थे, दो ही नहीं पड़ता ना, तीन मन क्या आता है कहानी में, रामचंद्र जी के चरित्र की कहानी में दो ही मन गया क्या, दो ही उंगली भी दादी थी
साल
बनवास और ये तो अपनी मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए वरदान मांगा, लेकिन रामचंद्र जी ने अपने पिता की आज्ञा, क्योंकि वो तो परवशतास है, परम सत्य के लिए वचनबद्ध हो गए, लेकिन परम सत्य की सेवा करने के बजाय इनको अभी विरह प्राप्त हो रहा है, तो तय कर लिया कि मैं अपने जान भगवान के लिए न्योछावर पहले कर दो, इसीलिए चले गए। ऐसे नहीं कि आघात लगा है इसलिए चले गए। दशरथ राजा को बेटे का विरह टॉलरेट नहीं किया जाता, वो विचार से ही कब से हताश हो गए। यदि हम सुख चाहते हैं अपने इंद्रियों को, दशरथ राजा सोचते थे कि मैं अपने हाथों से उसे गाड़ी पर बिठा दूं, तय तो कर लिया, निश्चय कर लिया, सभी ने आज्ञा भी दे दी चलो, लेकिन बीच में ये मंथरा से दुर्बुद्ध हुई, कई कई ने घुसपैठी कर दी। वो तो निश्चयबद्ध थे, लेकिन अभी क्या होता है कि भगवान से जो विरह, यानी कि परम सत्य से जो कोई अलग करना चाहता है किसी को, तो जीवन चला जाता है, जीवन चला जाता है। हम सत्य है कि नहीं, आप सत्य हो कि नहीं, सभी आत्मा सत्य है कि नहीं, आत्मा सत्य है कि नहीं, आप कौन हो, आप शरीर हो, आप पुरुष हो, स्त्री हो, ये सब झूठी उपाधियां हैं, वो बंधनकारी बातें हैं, जो हम नहीं है उसे हम अपना लेते हैं, यानी कि हम अज्ञानता के बंधन में पड़े हैं। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो सत्य प्रकट होता है कि हम कौन है। हर एक जीव भगवान का अंश है, दिव्य है, भगवान परम सत्य है तो अंश भी परम सत्य होना चाहिए। भगवान को कोई मर्यादा नहीं है, हमें मर्यादा है, हम छोटे हैं, मर्यादित हैं, लेकिन परम सत्य है। आप हो ना, आप जीते हो ना, क्योंकि आत्मा है ना अपनी, इसलिए जीते हैं ना। तो जो आत्मा और परमात्मा का परम सत्य जो है, वो टिकाने के लिए हम इस जिंदगी में क्या करते हैं, कुछ नहीं। भक्ति ही एकमात्र व्यवहार हो सकता है जो परम सत्य से टिकता है। यदि हम भक्ति नहीं करते, इंद्रिय तृप्ति या मनोरंजन बना देते हैं भक्ति को भी, तो गए काम से, क्योंकि वहां अनियंत्रित इंद्रिय मन को मंथरा ही बनाएगी, मन को मंथरा ही बनाएगी, तो परम सत्य की सेवा नहीं, हमें बिछुड़ना पड़ेगा परम सत्य से, यानी कि मरे। जो भक्त नहीं है वो मरा हुआ आदमी कहलाता है, सिर्फ आहार निद्रा भय और मैथुन के लिए जीता है, धर्म के लिए नहीं जीता है। धर्म जीवन है, जीवन को कौन धारण करता है तो भगवान। हमारे में यदि जीवन है तो भगवान धारण करते हैं, इसलिए हमने भगवान नहीं बनाए, भगवान ने हमें बनाया है। इसलिए ये जो रघुकुल की रीति सदा चली आई, प्राण जाए फिर वचन न जाए, लेकिन ये वचन परम सत्य होना चाहिए। कोई भी वचन दे दो वो वचन नहीं है, और ये वचन भगवान श्री रामचंद्र जी उठा देते हैं। चाहे कई कई ने तो असत्य, यानी कि परम सत्य नहीं असत्य को स्थापना करने की सोची, मैं उसे भी उठा देता हूं और मैं परम सत्य जाहिर करके रहूंगा। यानी कि असत्य पर सत्य की भी विजय होती है। कभी भी ऐसा नहीं कि असत्य जीता है, कभी जीत नहीं होती उसे। असत्य के आग्रही कौन होते हैं? राक्षस लोग। सत्य के आग्रही कौन होते हैं? देवता है। ये दोनों में हमेशा झगड़ा होगा ही, लेकिन ये दोनों हमारे में भी अंदर पड़े हैं। इच्छाओं के राक्षस, बहुत सारी असत इच्छाएं हैं। ये इच्छाएं सब मन में पैठी हैं, यानी कि अनियंत्रित जीवन में, अनियंत्रित जीवन में हमें ढेर लाभ है। जीवन को नियंत्रित करने के लिए इस युग में नित्यम भागवत सेवाया बताया है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवाया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जो नित्यम भगवान के भक्तों की और श्रीमद् भागवत की सेवा करता है, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये रामायण कहते हैं, जिसके दो ही अध्याय में संक्षिप्त में बता देते हैं, इसका कारण कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, रामचंद्र जी की सारी आध्यात्मिक लीलाओं का वर्णन बहुत ऊंची कोटि के संतों ने, जिन्होंने सत्य का परिचय किया है, परम सत्य का परिचय किया है, ऐसे लोगों ने ही बताया है। और क्योंकि तूने बहुत बार सुन चुका हो, तुम बहुत बार सुन चुके हो भगवान रामचंद्र जी की लीलाएं, तो मैं तुझे संक्षिप्त में ही कहूंगा, लेकिन परम सत्य संक्षिप्त में भी प्राप्त कराऊंगा। सारी कथाएं जो होती है, रामायण पारायण इत्यादि, यहां तो होते ही रहते हैं, सही है? कितनी बार सुनते हैं, कान भी फूट गए होंगे, लेकिन ब्रह्म ज्ञान परम सत्य का ज्ञान नहीं आया, उसका क्या? कथा श्रवण तो अपने आप में शुद्ध होती है, लेकिन हम निर्मल कथाओं में स्नान करके फिर भी अपने बाहर आकर धुएं फेंकते हैं, शौच कुंजरवत जैसी बातें करते हैं। निर्मल कथा में स्नान करके हम अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति करने लगते हैं, इसलिए हमें कथा का फायदा होता नहीं, हम वहीं के वहीं रहते हैं, बहुत सारी अंधश्रद्धाओं में पड़े रहते हैं। हाँ, ये अंधश्रद्धा है, उसका कोई विकास नहीं कर सकता। इसमें से बाहर निकलने के लिए हमें भगवान का नित्यम उपचार करना पड़ेगा। वो भगवान के नाम द्वारा उपचार शुरू होता है। जो मान्यताएं हैं वो मान्यता मन की होती है ना, मान्यता यानी मन से पैदा हुई है, लेकिन मन परम सत्य के साथ यदि तालमेल नहीं रखता है तो ये झूठी मान्यता या अंधश्रद्धा में पलटती। शास्त्र कभी नहीं कहता है कि गलत चीज खाने से तुम पवित्र बनोगे, क्योंकि आपके घर रामायण है। नशे करके आप पवित्र ही रहोगे, क्योंकि आपके घर में रामायण है। शास्त्र कभी ऐसा नहीं कहता, लेकिन ये पुस्तक की बिक्री के लिए कहने वाले हैं कि जिसके घर, चाहे वो कितना पापी क्यों न हो, जिसके घर रामायण पड़ी है ना, तो हनुमान जी उसके घर की चौकीदारी करते हैं। हाँ, क्यों हनुमान नौकर बन गए क्या, और हम अपवित्र जीवन जी रहे, वो हमारी नौकरी करते हैं, कभी है? नहीं है। वहां तो भूत पिशाचों का ही वास होता है, वो तो घबराने के लिए नहीं, लेकिन वहां से अरे खुद व्यक्ति बुद्ध जैसा जी रहा है रामायण सुन सुनकर, उसका छुटकारा कैसे होगा। तो पवित्र होने की तो बात ही कहां, मन यानी कि मंथरा जैसा पड़ा है, मंथरा जब हट करती है ना, जितना ज्यादा हट करती है उतना दुख दशरथ को होता है। और तुरंत दशरथ का वियोग उसके जीवन से छुड़वा देता है। कई हठीले पड़े हैं। हम कल गए थे तारियली में, हमने रामायण की महत्ता बताई, सबने सुनी, हाँ 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 करते रहे। वो मंदिर में हुई थी, जैसे ही हमने कथा शुरू की कई लोग गए और कावा घुटना शुरू कर दिया। यानी कि कथा सुनी सुनी खुटिया ज्ञान, तो एक ब्रह्म ज्ञान, जान बुझ कर हठीले बनते हैं, मंथरा हठीली बनती है, ऐसे लोग जान बुझ कर हठीले बनते हैं और राम जी को उनका मूल आसन भी नहीं देते हैं, उनको भगा देते हैं। 14 साल बनवास, यानी ये कितना घोर अपराध हो सकता है, इसकी कोई कल्पना है क्या? बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं, वो तो जैसी करनी वैसी भरनी तो होगी होगी। हनुमान जी बीच में नहीं आएंगे, रामायण बीच में नहीं आएगा, भगवान भगवत गीता में कहते कि मैं भी बीच में नहीं आता।
भगवान किसी का पुण्य और पाप सृजन नहीं करते। व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से दोनों खड़ा करते हैं और दोनों को भुगतना ही पड़ता है। ये शास्त्र का निदान होता है, उसके साथ सम्मत अभिप्राय होना चाहिए, नहीं तो वो गलत है। और वो भी तुलसीदास जी तो चैतन्य महाप्रभु जी के बाद हुए। इनका चरित्र शुद्ध था, एक शुद्ध कोटि के भक्त हैं। चलो, लेकिन ज्यादातर यहां फिजी में जो रामायण पढ़ी जाती है ना, वह ज्वाला प्रसाद मिश्र जी के मुरादाबाद वाले हैं, इनकी है। उन्होंने बहुत सारी आवृत्ति की है, करीबन 29-30 आवृत्ति हो गई है। तो कितनी बिक्री होगी? तो ज्यादातर ये बिक्री फिजी में, साउथ अफ्रीका में और ब्रिटिश गयाना में हुई है। जहां अपने भारतीय मूल के करीबन 5 पीढ़ी से रहे हैं, भारत से दूर हैं, और वहां की जो भौतिक परिस्थिति के अनुसार उनके आहार व्यवहार में बहुत भेद आ गया है। हृदय है भक्ति का और रामायण पढ़ने का, लेकिन शुद्धता का कोई नाम नहीं। तो इन लोगों को उत्तेजन करने के लिए 1908 में, यानी कि ये रामायण तो करीबन 1631 में तुलसीदास ने रची है, और 1908 में कोई गोपाल दास करके आया, उसने महात्म्य रचा। और तुलसीदास जी की सरिखा है, मैं वो जो अजामिल, यानी कि ये रामचरितमानस की जो सरिखाएं है, वो अजामिल के किस्से से शुरुआत करते हैं कि अजामिल ने भगवान का नाम लिया, देखो कितना पापी था, फिर तर गया ना। उसी तरह जिसके घर में रामायण पड़ी है और जो अति पापी है, मनस खाता है, शराब पीता है या नशा करता है, वो भी तर जाएगा। रामायण पड़ी है लेकिन अजामिल ऐसे नहीं तरा है। भागवत में आप पढ़िए, भागवत यूं कहता है कि जब यमदूत और विष्णुदूत दोनों ने झगड़ा देखा उसने, तो अजामिल की बुद्धि फिर से जागृत हुई। उसका पूर्व जन्म या पूर्व जीवन एक ब्राह्मण का था और हर रोज मंदिर के लिए पूजा के लिए जाता था। एक दिन वो वेश्या पर नजर पड़ गई तो सारा जीवन पलटा मारा और दुष्ट बुद्धि का जीवन जिया उसने। 80 साल का हुआ फिर भी एक बेटा हुआ उसको। तब उसकी वेश्या जो स्त्री थी, उसने सोचा कि बूढ़ी उम्र में कौन पालेगा, कैसे इसका व्यवहार, कौन उसे देखेगा, हम तो मर जाएंगे अभी, 80 साल के तो हो ही गए हैं। तो उसने सुना कि कोई किसी साधु के आशीर्वाद तो प्राप्त करो, कुछ तो हो जाएगा। कोई साधु उसके घर नहीं चढ़ते थे, गलती से भी नहीं जाते थे, ऐसी इन लोगों की ख्याति थी, अजामिल की और उसमेशिया की। लेकिन उसने निश्चय किया कि ये बच्चा निराधार बन जाएगा, चलो मैं कुछ किसी के भी आशीर्वाद प्राप्त कर लू, उसकी भावना नहीं। तो सामने से जाती है और साधु से पूछती है कि ऐसी हालत है हमारी, पेट में बच्चा है, हम इतनी बुरी हो गई है, तो क्या उसकी रक्षा के लिए हमें आशीर्वाद दोगे, हमारे घर आओ।
तो कह ना पापा ना घर तो नहीं आएंगे
तो आशीर्वाद कैसे दोगे।
तो कहते कि एक शर्त था, तेरे यहां न खाएंगे न पिएंगे न कुछ लेंगे।
वो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो हमारा पति तो हमारा जान देता।
तो कहा कि यदि तू ये शर्त मंजूर करती है तो आएंगे।
तो क्या शर्त है?
तो बच्चा जन्मे उसका नाम तो है नारायण रखना,
बस इतना।
ओ बहुत बढ़िया बात है, सस्ते में आशीर्वाद मिल जाएंगे।
तो आशीर्वाद दे दिया और बच्चा पैदा हुआ, नाम रख दिया नारायण।
जब बुरा होता है कोई तो उसे बच्चों से ज्यादा प्यार होता है, क्योंकि बुढ़ापा भी बचपना जैसा निराधार स्थिति वाला प्यार रहता है।
यानी कि दोनों में काफी दोस्ती हो गई,
बाप बेटे में काफी दोस्ती।
सारा दिन नारायण नारायण करके जाता था,
बच्चे को बुलाकर, भगवान को नहीं।
तो जब अंत समय आया तो यमदूत आए, उसके आत्मा को खींच जबरदस्ती से फांस बांधकर खींचने लगे।
तो वो घबराया, नारायण बचाओ,
पुकार दिया, बच्चे के लिए पुकारा।
तो लेकिन विष्णुदूत आ गए।
अब विष्णुदूत ने यमदूत को रोका है, खबरदार मत ले जाओ उसे।
उसने भगवान का नाम लिया है तो इसमें क्या बड़ी बात है?
उसने इतने पाप किए, ये है
हमारे नाम में तो लिस्ट में तो कब्ज का चढ़ गया है, वो इसलिए लेने आए हैं।
तो नाम नहीं ले जा सकते।
तो क्यों?
क्योंकि भगवान का नाम तावक है,
इसीलिए।
तो कैसे हो सकता है?
तो जो देखो पूछना है तो तुम्हारे मालिक से ही जाकर पूछो।
और यमराज विशुद्ध भक्त हैं,
यमराज विशुद्ध भक्त हैं, ये मामूली नहीं है कोई।
यमराज की भी ये महात्म्य में थोड़ी हंसी उड़ाई है,
यमराज मामूली नहीं है,
विशुद्ध भक्त हैं। वो जानते हैं
कि भक्ति क्या चीज है, बारह महाजनों में उसका नाम है
अधिकारी हो, जो भक्ति के अधिकारी हैं बारह।
कौन कौन है पता है?
स्वयंभू यानी कि ब्रह्मा जी, नारद, शंभू, चार कुमार है, कपिल देव, मनु भगवान, जनक, भीष्म पितामह, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, वैयासकी यानी कि व्यासदेव के पुत्र जो कथा कर रहे हैं वो भी महाजन है, और वयम यमराज।
तो ये बारह महाजनों में यमराज का जो यदि स्थान है तो भक्ति के अधिकारी वो भक्ति जानते हैं तो सीधा न्याय देते हैं कि हाँ दूतो हमारा अधिकार नहीं,
वो भगवान की मर्जी पर इनका अधिकार हो जाता है जो भगवान का नाम लेता है। तो
अब हुआ क्या कि ये झगड़ा देखकर अजामिल कि जो पूर्व जीवन था ना तो तुरंत याद आ गया, उसके संस्कार फिर से जागृत हो गए।
कहते कि वो मरा नहीं, न तो विष्णुदूत ले गए हैं उसे,
वो तुरंत उठा हरिद्वार गया और अपना शेष जीवन भगवान की भक्ति में बिताया है और पुनः वो स्थिति अध्यात्म की प्राप्त की है उसने, उसके मन को नियंत्रित किया, सब कुछ किया। बाद में विष्णुदूत फिर से आए हैं और वैकुंठ ले गए हैं।
ये हमारी अजामिल जैसी शुद्धि कब होगी वो हम कहना चाहते हैं।
जब तक हम मांस खाना नहीं छोड़ेंगे, कावा पीना नहीं छोड़ेंगे, चाय ये सब छोड़ेंगे नहीं, तब तक शुद्धि की कोई बात ही नहीं।
तो ये हकीकत है। लिख देना या वो हमें उत्तेजन नहीं देता ऐसी चीजें। हम समझ रहे हैं कि ये सारा उत्तेजन दे रहे हैं, ऐसा गलत फहमी और मान्यता का रामायण पढ़ने से क्या फायदा है। तो तब हमने देखा, राम इनके लीडर को बताया, वो बेचारा क्या करे कि यहाँ तो गरीब है। मैंने बोला यद्यदा चरते श्रेष्ठ तत्व करोजना सहयत प्रमाणम गुरुते लोकास्तर अनुवर्तते। यदि लीडर है तो यू बिकम एग्जेम्पलरी एंड गेट इट ऑफ दिस ग्रेजुअली। हम विकास देखना चाहते अपने भाइयों का। फिजी में आप लोग कोई मामूली थोड़े हो, हमारे लिए तो बहुत प्रेशियस है, क्योंकि जिसके नसों में वैदिक लहू बह रहा हो, भारतीय वो लहू बह रहा हो तो वैदिक संस्कार जागृत होने ही चाहिए और अपना जीवन संवारना चाहिए। हम मंथरा जैसा जीवन नहीं जीना चाहते। हम तो अपने ही हृदय में रामचंद्र जी को 14 साल से नहीं, कितने साल से बर्बाद दे चुके हैं। कई कई ने तो 14 साल का ही दिया था। हम लोगों को पूछेंगे, भैया आप कितने साल से कावा पी रहे हैं, कितने साल से मांस खा रहे हैं। रामचंद्र जी ने तो ऐसा नहीं किया था। मंथरा करवा सकती है, मंथरा पर भरोसा नहीं। हम मन के माने धर्म, मनोधर्म, वो छल करता है तो उस पर भरोसा नहीं रखते। इसलिए बुद्धि द्वारा हमें मार्गदर्शन प्राप्त करना है। जो जिसकी बुद्धि में भगवान बसे हैं तो भगवान अपने रथ की सारथी बनकर चढ़ाएंगे और लड़ने को कहेंगे, चल अर्जुन यहां बाण मार, यहां ये अस्त्र फेंक, ये कहते जाएंगे। तो जीवन बहुत निर्भय हो जाता है भगवान की सुरक्षा वाली बुद्धि प्राप्त करके, क्योंकि भगवान परम सत्य है, परम सत्य रामचंद्र है। तो वो परम सत्य का हमने अपनी मर्यादा में रहकर काम करने को, हम ये सब अनिष्ट करके हैं, यानी कि कावा दावा ये जो भी है ये सब अनिष्ट है, वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। ये लक्ष्मण रेखा हमें चार चीजें बताई हैं कि ये मर्यादा का उल्लंघन मत करना। कौन सी मर्यादा है? फोर नेगेटिव प्रिंसिपल्स। किसी भी प्रकार का अभक्ष्य भोजन नहीं, मांस मदी मांस अंडा या मछली का सेवन नहीं, अरे मशरूम भी नहीं, मशरूम भी नहीं, उसका सेवन नहीं। दूसरी मर्यादा, किसी भी परस्त्री के साथ व्यभिचार नहीं, अपनी पत्नी भी मनोरंजन का साधन नहीं, वो भी भगवान का अंश है, तो उसका बहुमान भक्त के रूप में या उसको भक्त बनाने में होना ही चाहिए। तीसरा, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं, नशे वाली चीज, सिगरेट बीड़ी तो बाजू ही रही, अरे चाय कॉफी की भी बात करेंगे हम, खबरदार छोड़ो, ये ब्रिटिश लोग आ गए हमें गुलाम बना गए, लेकिन चाय तमाकू छोड़कर हमें इनके गुलाम भी बना गए, खुद के गुलाम बना गए, ये तो इन चीजों के भी गुलाम कर, ऐसी कैसे गुलाम है हम कि जो छूटती नहीं, कब तक गुलामगिरी करेंगे? स्वतंत्रता नहीं चाहते क्या? मुक्त नहीं होना चाहते? चौथा पुरुषार्थ बुढ़ापे में कैसे पालेंगे हम मोक्ष के लिए? तो शिक्षा तो ऐसी ही होनी चाहिए, बचपन से प्राप्त करनी है। अभी बाकी रहा चौथा निषेध मर्यादा, कि किसी भी प्रकार का ये सट्टाबाजी होती है, जुआ खेलना या किसी भी प्रकार का स्टॉक बॉन्ड जो गारंटीड नहीं है उसमें इन्वेस्ट करना, पसीने की कमाई है वो भगवान की शक्ति द्वारा प्राप्त हुई है, उसे लुटा देने में या दूसरों को कंट्रोल करने में क्यों उपयोग करते हो, खुद क्यों नहीं कर सकते। जीवन लोटरी है कि $10 देकर हम $1,00,000 कमा लेंगे, जीवन बर्बाद हो जाता है, लोभ बढ़ जाता है, यानी कि मंत्र राज्य करेगी। भरत तो बहुत बढ़िया है कि अपनी माता को भी ठुकराता है, क्योंकि वो परम सत्य की राह पर नहीं है। वचन हमेशा परम सत्य का ही होना चाहिए, झूठ मूठ का हम ज्यादा बकवास करें क्यों, सारी जिंदगी बेकार जाती है। मनुष्य है तो हमें इस ढंग से रामायण की महत्ता समझना चाहिए, नहीं कि अंधा विश्वास, अरे कावा चलेगा, मांस चलेगा, हनुमान जी चाकरी करेंगे, हम मंडली में जाया करेंगे बस, ना ना इससे कोई फायदा नहीं, इससे कोई फायदा नहीं। फायदा करना है तो अपनी पवित्रता बाहर निकालो। कल हमने प्रश्न किया था इन्होंने से कि आप लोग हमारे यहां प्रसाद क्यों नहीं लेते हैं, मुझको वो प्रसाद होता ही नहीं, कैसे लेंगे, क्या आप हमें हमने जो भगवान के समक्ष अग्नि के समक्ष और गुरु की और भक्तों की समक्ष जो शपथ ली है कि ये चार मर्यादाओं का हम पालन करेंगे, क्या हम आप वो तोड़ना चाहते हैं। अरे यहां हम आपके यहां प्रसाद लेने के लिए कब से राह देख रहे हैं, पता है क्या आप हमें कब खिलाओगे, लेकिन कैसे खिलाओगे, पवित्रता से खिलाओगे। प्रसाद तो महापवित्र होता है, प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्यों पर जाए थे, सब कुछ मिल जाता है और एक कणिका प्राप्त कर भी हो सकता है, लेकिन प्रसाद की महिमा जो अति पवित्र होती है, तो ये मंथरा जब निकलती नहीं, शांत नहीं होती, प्रसाद बनाने वाला भी पवित्र नहीं कहलाता, कैसे खाएंगे। कम से कम जो व्यक्ति भगवान का नाम नियमित रूप से नहीं लेता है और भगवान को भोग लगाकर नहीं खाता है, उसका मनुष्य जीवन शुरू ही कहां हुआ है, इनके यहां कैसे प्रसाद लेंगे। हम तो आए हैं आपसे मित्रता करने के लिए और इस तरह समझाने के लिए कि हम सचमुच आपके यहां प्रसाद खाने के लिए बहुत उत्सुकता से राह देख रहे हैं, लेकिन कब, ऐसे नहीं कि आप हमारे भाई नहीं हो, हमने ऐसा जवाब दिया, जहां स्वामी जी सही बात है। लोग पूछते हैं हरे कृष्ण वाले तो हमारे यहां प्रसाद लेते हैं, वो टेक इट फॉर ग्रांटेड एज इट दे हैव बिकम प्यूरिफाइड, हाउ वी वॉन्ट टू शो, वी वॉन्ट टू चेंज, मेक ए चेंज, हम बुद्धि को आगे, हम अंधविश्वास से कोई धर्म नहीं सिखाते, पढ़े लिखे वही स्वीकार सकते हैं ऐसा भी नहीं है, जिसमें थोड़ी सी भी पर्याप्त बुद्धि रही हो भगवान की या परम सत्य की, और वो भी नहीं है तो भक्ति करने से वो मिलती है, भगवान स्वयं देते हैं। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं पता है? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयान्ति। वो बुद्धि तो मैं देता हूं जिसके द्वारा वो मेरे पास आएगा। हमारे में नहीं है तो क्या हुआ? भगवान के समझाए अनुसार हमें समझने की तो आवश्यकता है और करने को कहते हैं वो करने की भी तो आवश्यकता है। तो उपदेश हमें ग्रहण करना चाहिए, उपदेश हमें ग्रहण करना चाहिए। ये हर एक व्यक्ति की स्वयं के लिए जिम्मेदारी है। तब रामायण सुनने से फायदा होगा। हम तो बहुत बात सुन चुके हैं, वो मनोरंजन के लिए जाते हैं। कथा में चित्त नहीं, कावा में चित्त होता है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, परीक्षित महाराज को तो 7 दिन की मोहलत मिली। 7 दिन में भी 75% समय तो बीत चुका, क्योंकि ये तो 9वां स्कंध चालू हुआ। 12 स्कंध में खत्म होते ही परीक्षित महाराज चले जाएंगे भगवान के धाम में। तो 3 दिन भी समझो कि बाकी नहीं है, 2.5 दिन बाकी होंगे। तो 2.5 दिन में परीक्षित महाराज को सारी तैयारी, सारी रामायण कैसे सुनाएंगे? तो जो जितनी आवश्यक रामायण है उसका तत्व जानने की बात बता, सत्य क्या है, कहां सत्य छुपा है। वो तो भक्तों ऐसे ये 12 महाजनों के वो जैसे बताते हैं इनके कदमों में चलकर ही प्राप्त होता है। पवित्रता की शुरुआत भगवान के इन पवित्र नामों का हमेशा रटन करते रहना, तब शुरुआत होती है। इसलिए हरे कृष्ण वाले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गाते ही रहते हैं। ये सबको गाने को कहा है, वो शास्त्र में लिखा है। नारद मुनि को समझाते हुए ब्रह्मा जी ये महामंत्र देते हैं कि कलयुग में इस 16 शब्दों वाला जो महामंत्र है इसके अलावा दूसरा कोई भवसागर को पार करने वाला कोई उपाय नहीं है। इस कलयुग में दूसरे युगों की बात मत छोड़ और दूसरे मंत्रों की भी बात मत करो, इस युग में इस महामंत्र काम करेगा, ये स्पष्ट कहते हैं। तो हमें थोड़ी सी बुद्धि का उपयोग करके भी शास्त्र में कहा है तो क्यों न करें, वो झूठ थोड़ा है। परम सत्य की उपासना तो आप किसी को कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं, परम सत्य पता चल गया, सारे संशय मिट गए, सारी हृदय की ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो गई, मान्यताएं और भगवान की शरणागत हो गए, खटवांग महाराज को तो एक पल हुई थी, पता नहीं हमें कितनी बार यहां आकर कहना पड़ेगा। फिर भी प्रश्न नहीं करते। यदि प्रश्न करोगे तो संशय टूटेगा, समाधान हो जाएगा। आपको कोई प्रश्न है? प्रश्न तो होना ही चाहिए। आपका क्या मंतव्य है? मैं प्रश्न पूछता हूं। आप मंथरा को न्याय दोगे या परम सत्य रामचंद्र भगवान को या दशरथ महाराज? किसको न्याय मिलना चाहिए? किसके पक्ष में हो? मंथरा के पक्ष में हो या दशरथ महाराज के पक्ष में हो?
मंथरा अपने मन से नहीं बोले बाबूजी। हैं? मंथरा अपने मन से नहीं बोले। ऋषि मुनि जब उसके सब उसके कंठ में बैठ गए कि ये वाला चीज अगर यहाँ नहीं गए, यहाँ राजा बन गए तो ये आगे के दाल में नहीं हुई।
हम तो अपनी मंथरा से बात कर रहे हैं। वो मंथरा को मारो गोली। अपने अपने मन को मंथरा कहते हैं। ये मंथरा को न्याय दोगे या बुद्धि को न्याय दोगे?
माफ करना जो सही गलती नहीं है।
नहीं, गलती नहीं है। वो इससे हमें बोध क्या मिलेगा? यदि ऋषि मुनियों ने ऐसा कर दिया और ऐसा कर दिया, लेकिन हमारे जीवन में क्या बोध है? मैं तो बोध की बात कर रहा हूं। हम किसको न्याय देंगे? बुद्धि को न्याय देंगे या मंथरा को, मन को? किससे काम करना चाहिए? परम सत्य जानने के लिए, परम सत्य की उपासना करना है, पूजा करना है, भगवान है। बुद्धि। तो बेटा कभी गलत मत खाना कुछ, हाँ? कावा मत पीना।
शाकाहारी है बाबू जी।
है
शाकाहारी है।
सभी शाकाहारी होने चाहिए। मनुष्य सभी शाकाहारी होने चाहिए, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने दिया है ऐसा दान। लेकिन ये इच्छा विरुद्ध जब काम करता है तो अपने आप में फंसता है। सिर्फ शाकाहारी तो वैसे ये कबूतर भी शाकाहारी होते हैं, पता है? शाकाहारी होने से वो भगवान के पास थोड़ा पहुंचता है। शाकाहारी भगवान की मान्यता और जीव हत्या से बचने से उसका जो एक कर्तव्य भगवान की ओर आगे बढ़ता है, अनुकूल है, क्योंकि भगवान स्वीकारेंगे सभी शाकाहारी चीज। हमें भक्ति से देना है ना, इनको मांगते हैं तो शाकाहारी होना, लेकिन भक्त न होना वो ठीक नहीं। देखो पत्रम पुष्पम फलम तो हम इसमें सब शाकाहारी आ गए हैं, शाकाहारी है तो, लेकिन भगवान को देखा है। मम्मी को कहना पकाना है तो भोग लगा, भगवान को दे। तो शाकाहारी से भी ज्यादा तो बड़ा होगा। भक्त बन सकता है। समाज में ये बुरी आदतें, बुरी मान्यता इत्यादि जब घुसपैठती है तब समाज सुधार की आवश्यकता दिखाती है। बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो समाज सुधारक के रूप में बने हैं, लेकिन परम सत्य को आगे नहीं किया है। समाज का सुधार परम सत्य के प्रति के लिए करना चाहिए, वह भक्ति है। भक्ति से सारा समाज सुधर जाएगा। एक व्यक्ति सुधरता है तो सारी व्यवस्था सुधर सकती है। यहां भी होंगे, देखो भक्त बने हैं तो गलत चीज खाने वाले थे कि नहीं पहले, ऐसा नहीं कि हमें कोई नाक शर्म रह जाएगी और हम जो करते हैं तो ठीक है, नहीं। अरे सब कर गए हैं, लेकिन सब गए होंगे कहां, पता नहीं कि हम तर्पण करने में भी समर्थ नहीं है, क्योंकि न तो एक पुत्र की जिम्मेदारी निभा सकते हैं पिता के लिए तारण करने की, खुद तारण नहीं कर सकता तो कैसे दूसरों का तारण करेगा। तो हमारे पास सिर्फ रीति रिवाज रहे हैं, सत्य कहां रहा। जैसे सांप होता है वो चला जाता है तो उसकी लाइन बनी रहती है, सही ना, वो तो चला गया, लाइन बनी रही, अब तो लाइन भी चली गई, कोई पालन करता ही नहीं। तो ऐसे धार्मिक रीति रिवाज पर हमें क्यों भरोसा करना चाहिए, सत्य पर भरोसा। और सीधा मिलता है कलयुग में, भगवान देते हैं कृपा करके अपने नाम द्वारा, तो नाम का परिचय करो, नाम लो, बोलो हरे कृष्णा, जोर से हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा,
हरे हरे
हरे
राम
हरे
राम
राम राम
हरे हरे।
आप
सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की।